नमस्कार भारत, आज है 5 सितंबर दिन सोमवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से हुर्रियत नेताओं ने मिलने से किया इनकार।
हम इस देश के लिए हैं और देश के खातिर कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं है।
G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति और ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात। मोदी ने प्रमुखता से उठाया कश्मीर का मुद्दा। वेतन संबंधी परेशानी झेल रहे बिहार के 4 लाख शिक्षक टीचर्स डे को अपमान दिवस के रूप में मना रहे हैं।
12 वर्ष नियोजित शिक्षक हो गए, समय पर वेतन आज तक शिक्षकों को नहीं मिला है और सेवा सर जो आज तक नहीं बना है शिक्षकों का सेवा सर उसको लागू किया जाए।
सुनिएगा साप्ताहिक स्तंभ खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय शहर में हड़ताल और प्रदर्शन हुए हैं। जब प्रतिनिधिमंडल के 4 नेता हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने गए तो उन्होंने उन नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया के एलेप्पो शहर में सरकारी सैन्य बलों को बड़ी कामयाबियां मिली हैं और वो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके की पूर्ण घेराबंदी करने में कामयाब हो गए हैं। सीरिया पर नजर रख रहे कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकारी सैन्य बलों ने एलेप्पो के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित रामुसेह जिले के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके पर विद्रोही गुटों के गठबंधन ने बीते महीने कब्जा किया था और वे सरकारी सेना की घेराबंदी तोड़ने में कामयाब हुए थे। विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके में अभी भी लगभग 2.5 लाख नागरिक हैं जो सेना की घेराबंदी में फंसे हैं। सीरिया में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयास नाकाम हो रहे हैं। अमरीका और रूस के बीच भी शांति वार्ता को लेकर अंतिम समझौता नहीं हो सका है। इसी बीच तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली येल्द्रिम ने कहा है कि तुर्क सेना के समर्थन से सीरियाई विद्रोही गुटों ने तुर्की की दक्षिणी सीमा से सटे सीरिया के इलाकों से इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह खदेड़ दिया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक अजाज से लेकर जाराबुलू शहर तक के क्षेत्र को इस्लामिक स्टेट से मुक्त करा लिया गया है। प्रधानमंत्री बिनाली येल्द्रिम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब अजाज से लेकर जाराबुलूस तक हमारी सीरिया से लगी 91 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। सभी चरमपंथी संगठनों को पीछे धकेल दिया गया है, वो अब यहां से चले गए हैं। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्कल को मैकलेनबर्ग पश्चिमी पेमरानिया प्रांत में हुए चुनावों में तगड़ा सियासी झटका लगा है। यहाँ उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी 3रे नंबर पर खिसकती दिख रही है। इन प्रांतीय चुनावों में अंगेला मर्कल की प्रवासियों को शरण देने की नीति पर लोगों में असंतोष का मुद्दा हावी रहा। हांगकांग में विधान परिषद के लिए हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। 2014 में लोकतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के बाद हुए इन पहले प्रमुख चुनावों में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। भारी मतदान के कारण गिनती में समय लग रहा है और सूडान के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद देश में शांति सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पहले दिन कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आमंत्रण के बाद भी हुर्रियत के नेता प्रतिनिधिमंडल से मिलने को तैयार नहीं हुए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CPM नेता सीताराम येचुरी, CPI नेता डी राजा और JDU नेता शरद यादव ने हुर्रियत के सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यासिन मलिक ने भी कह दिया कि कश्मीर घाटी के हालात को देखते हुए वो प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से कश्मीर में बात नहीं करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में JDU नेता शरद यादव ने कहा,
ऐसा है कि हमारा काम है, हम इस देश के लिए हैं और देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं है।
यासीन मलिक से जो बात हुई उन्होंने क्या कहा आपसे?
उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ परिस्थिति जो है उसमें बात नहीं, आपसे आकर के वहाँ बात करेंगे दिल्ली में।
ये थे जेडीयू नेता शरद यादव। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल एनसीपी के नेता तारिक अनवर से बात की और सबसे पहले पूछा कि प्रतिनिधिमंडल जिन उम्मीदों को लेकर श्रीनगर पहुंचा है, पहले दिन उसमें कितनी कामयाबी मिली?
नहीं, अभी तो कोई बहुत कामयाब हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं और नेशनल पार्टियां हैं, उनके साथ, उनके नेताओं के साथ बातचीत हुई, घटनाएं चल रही कश्मीर में, उनका विचार जानने का मौका मिला, उनके सुझाव जानने का मौका मिला। अलग अलग जो सेक्शन के लोग हैं उनसे हम लोग मिले, लेकिन ये सही है कि जो एक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो अलगाववादी लोग हैं जिनको इनविटेशन दिया गया महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से, वो लोग भी इसमें शामिल हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में साथ बदलेंगे।
महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत के नेताओं को इनविटेशन दिया था, लेकिन केंद्र सरकार का क्या रुख था इसको लेकर?
नहीं, केंद्र सरकार मेरा ख्याल इसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा था ऑल पार्टी एमपी की जो बैठक, पहली बैठक हुई थी दिल्ली में गृह मंत्री ने जिसकी अध्यक्षता की, उसमें हम लोगों का ज्यादातर सुझाव था हुर्रियत के लोगों को हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जाना चाहिए जानी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद के उनकी पार्टी का मामला होगा, भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने कह दिया कि हम ऑफिशियली उनको इन्वाइट करेंगे। और ऐसे महबूबा मुफ्ती जी से शायद उन्होंने कहा होगा कि आप बुला सकती हैं तो बुलाइए।
लेकिन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कुछ नेता हुर्रियत के नेताओं से मिलने गए, मिलने की कोशिश की, उसके ज्यादा नतीजे नहीं निकले, तो ये क्या उनकी अपनी पहलकदमी थी या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो गया है उसका फैसला था?
नहीं, उनकी अपनी पहल थी, और पिछली बार भी जब इसी तरह का डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था 2009 या 10 की बात है, तो उस वक्त भी कुछ पार्टी के नेता अलग से उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और जाके इन लोगों से मुलाकात की। तो इस बार भी उसी प्रकार से किसी को रोका नहीं गया, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर आप मिलना चाहते हैं तो जाकर मिल सकते हैं, और अगर इस कोई बातचीत का रास्ता निकलता है तो बात होगी। लेकिन ऐसा कोई हम लोगों ने प्रस्ताव नहीं रखा, कोई इस तरह का कमिटी की तरफ से कोई इसमें पहल नहीं थी।
तो आपने भी क्या किसी नेता से मिलने की कोशिश की हुर्रियत की?
जो यूपीए के पार्टनर हम लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस ने ये तय किया, हम लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं जाएंगे, कमेटी कहेगी जाने के लिए तो अब हम लोग जाएंगे। लेकिन बाकी लेफ्ट फ्रंट के लोग तारा मिचूरी के साथ से लोगों से मिले हैं।
पहले दिन जो आपकी बातचीतें हुई, जो मुलाकातें हुई लोगों से, तो वहाँ का मूड किस तरह का आपको नजर आ रहा है?
ज्यादातर लोगों की इस बात में सहमति है कि मामला बहुत ही गंभीर है। उन लोगों ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लेने में बहुत देर कर दी है और जिसकी वजह से हालात अब काबू से बाहर हो गए हैं। जो भी वहाँ राजनीतिक दल के नेता आए, लगभग सबका यही कहना था अभी जो आंदोलनकारी हैं उनको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात का भी मशवरा दिया कि जब आप लोग आए हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, तो कोई ठोस प्रस्ताव भी देना चाहिए, कुछ पहल करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे हम कश्मीरियों को या उनकी भावना को हम छू सकें।
ये थे एनसीपी नेता तारिक अनवर। और अब सीधे चलते हैं श्रीनगर बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के पास। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की कश्मीर घाटी में जो मौजूदगी है उसको वहाँ की आवाम कैसे देख रही है?
जी देखें, ये तो कल सीधे सीधे स्पष्ट हो गया, क्योंकि पिछले 5-8 दिनों में जो स्थिति थी उसमें कल का दिन बहुत ही ज्यादा टेंस रहा और तनावग्रस्त थी वैली। जब ये सर्वदलीय डेलीगेशन यहाँ पहुंचा तो पूरी घाटी में प्रदर्शन हुए, और कल पुलिस के मुताबिक 35 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पथराव हुआ और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में मुठभेड़ें हुई और जख्मियों की संख्या जो है वो 300 से ज्यादा बताई जाती
है। जी, आज प्रतिनिधिमंडल का क्या कार्यक्रम है? हालात जैसा आपने बताया कि अभी भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, आज वो क्या कदम उठाने वाले हैं?
जी देखें, कल शाम तक तो हमें ऐसी सूचना मिली थी कि वो आज वापस जाएंगे या उनको शायद जम्मू जाना हो और वो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी तक भी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि क्या वो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे।
जी,
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब बात करते हैं चीन में हो रहे G20 सम्मेलन की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से अपील की है कि वे केवल बातें ना करें बल्कि आर्थिक विकास बढ़ाने की दिशा में काम करें। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। कल उन्होंने चीनी राष्ट्रपति और ब्रिक्स देशों के नेताओं से मुलाकात की थी। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर चीन के खांगजो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की और सबसे पहले पूछा कि मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने क्या मुद्दे रखे।
देखिए, G20 के मीटिंग के लिए मोदी साहब आए हुए हैं और ब्रिक्स के मीटिंग के लिए, लेकिन भारत की जो समस्या है, खास करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी है और भारत में घुसपैठ करते हैं, उसकी जो समस्या है वो अब भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये बात उन्होंने जब शी जिनपिंग यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो ये बात उन्होंने बड़े जोर भरने से उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आप सारी दुनिया की लीडरशिप लेना चाह रहे हो, लेकिन जहाँ टेररिज्म का सवाल है और खास करके वहां से जो टेररिज्म आ रहा है, जिस देश के साथ आपका सबसे घनिष्ठ संबंध है, वहां तो आप न तो रोक रहे हो और हम यूनाइटेड नेशन में जब वो बात ले जा रहे हैं तो भी आप रोक रहे हो। और ये भी कहा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो भी कश्मीर के अंदर से जा रहा है कि जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, तो वहां भी आप उल्लंघन कर रहे हो हमारी सीमाओं का। ये दो बातें उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आगे उठाई।
तो क्या चीन की तरफ से मोदी को कोई आश्वासन मिला?
आश्वासन की बात तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये आई कि उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है और इस रीजन में सबसे बड़ा देश है, उनकी बात को हम गंभीरता से लेते हैं।
एनएसजी का मामला भी सामने आया।
एनएसजी का मामला उन्होंने संकेत के तौर पर उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया, लेकिन साफ तरीके से उठाया गया नहीं, ये नहीं पता।
मोदी ब्रिक्स के नेताओं से भी मिले और ये चिंताएं खासतौर पर चरमपंथ को लेकर उस मीटिंग में भी जाहिर की, तो वहां से कोई बात निकल कर आई? किस दिशा में बात आगे बढ़ रही है, इस बारे में कोई संकेत मिला क्या?
ब्रिक्स 5 देशों का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। भारत, चीन और पाकिस्तान का जो मसला है, इस मसले को उन्होंने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म में उठाया, डिप्लोमेटिक डायलॉग का एक बहुत बड़ा तीर चलाया उन्होंने आज, और उस लेवल पे बातचीत ले गए कि इस गंभीरता से कि अब दुनिया के सामने चीन को एक तरह से बताना है कि भाई चीन कोई काम मदद नहीं करती है और यहाँ तक कि टेररिज्म के मसले में भी कोई काम नहीं आया। चीन को थोड़ा शर्म में डालने की कोशिश मोदी साहब ने आज की ब्रिक्स में बात उठा के। एक और बात, ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग गोवा में होने वाली है, तो उससे पहले ये बात उठाने से ये लग रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग जो गोवा में होगी उसमें टेररिज्म और खास करके पाकिस्तान में बेस्ड आतंकवादियों का मुद्दा मुख्य तौर से उठाया जाएगा।
G20 का सम्मेलन भी चल रहा है, दूसरे दिन का एजेंडा क्या कुछ होगा G20 का?
बहुत बड़ा एजेंडा क्लाइमेट चेंज पर है। पेरिस एग्रीमेंट के बाद सारी दुनिया के देशों ने ये कहा था कि कोयला जलाने से जो प्रदूषण होता है उसको कितना रोकेंगे, कितना काटेंगे। भारत और चीन दोनों ने मिलकर कहा था कि हम उतने तेजी से नहीं बढ़ सकेंगे जिस तेजी से अमेरिका बढ़ रही है, लेकिन अचानक से चीन और अमेरिका दोनों ने हाथ मिला लिया और चीन ने ये कहा कि हम प्रदूषण को बहुत तेजी से काटेंगे। तो ये एक तरह से भारत पर और मोदी साहब पे बहुत बड़ा दबाव आ गया है। मोदी साहब ये तो नहीं कर सकते कि भारत के 2,000-5,000 फैक्ट्रियों बंद करते, तो एक तरह से मोदी साहब के यहाँ आने के बाद ये जो घटना घटी, ये थोड़ा सा उनका दबदबा कुछ हद तक कम हो गया है या ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हमारे लोग बेरोजगार होने की संभावना है। मेरे ख्याल से G20 में जो कई मुद्दे हैं जिसमें टेररिज्म का भी मुद्दा है, ग्रीन फाइनेंसिंग का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे पर भारत सपोर्ट कर रही है और खासकर के पाकिस्तान के टेररिज्म वाले मुद्दे को लेकर उन्होंने आज ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी उठाई। मोदी साहब, ये जो पूरा हांगझो में हो रहा है, पूरे समिट में वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को ही मुद्दा बना रहे हैं।
ये थे हांगझो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन होता है, लेकिन बिहार के करीब 4 लाख नियोजित सरकारी शिक्षक आज का दिन अपमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये शिक्षक समान और नियमित वेतन समेत अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना पूरा होने पर मिलने वाली तनख्वाह के क्या मायने हैं, यह मिलने में थोड़ी भी देर हो जाए तो कैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल के करीब 4 लाख शिक्षक करीब पूरे साल ऐसे ही परेशानियों का सामना करते हुए अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं और ऐसा बीते कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक हाल के वर्षों में शिक्षकों को ईद, दशहरा, दिवाली, होली जैसे मौकों के आसपास कुछ महीनों का वेतन एक साथ मिलता है। पटना जिले के संपतचक प्रखंड के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक संतोष पाठक वेतन भुगतान की हालत बयान करते हुए कहते हैं,
पहला वेतन लगभग 8 महीने के बाद मिला तो एक मुश्त मिला था 8 महीने के बाद, उसके बाद 4-5 महीना जब हो जाता है तो 2 महीने का डलता है, फिर 5 महीना होगा 2 महीने का आपका डलेगा, कभी भी अप टू डेट नहीं है। 3 साल में हम देखे कि मेरा अप टू डेट कभी भी नहीं हुआ, पेमेंट नहीं आना, आप समझ लीजिए कि पूरा परिवार कैसे चलेगा।
अभय आर्या पटना जिले के ही गोपालपुर इलाके के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। वे भी बिना नियमित वेतन के अपनी गृहस्थी गुजारने को मजबूर हैं। इस कारण हाल के दिनों में हुई एक बड़ी परेशानी के बारे में वे बताते हैं।
नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण सर, ये हाल 2 महीने के रीजन में सर हमारे पिताजी को मेंटली प्रॉब्लम हो गया, हमको एक अच्छे साइकिस्ट दिखाना था और वेतन नहीं आने के कारण हम उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे में शिक्षक दिवस जब टीचर्स के सम्मानित होने का दिन होता है तब बिहार के ये नियोजित शिक्षक आज का दिन अपमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। वे नियमित वेतन और समान वेतन सहित अपनी 10 प्रमुख मांगों के समर्थन में आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे। शिक्षकों की अन्य मांगों में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने, जीविका कर्मियों से निरीक्षण के निर्णय को अविलंब वापस लेने जैसी मांगे शामिल हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष पूरन कुमार बताते हैं,
12 वर्ष नियोजित शिक्षक हो गए, समय पर वेतन आज तक शिक्षकों को नहीं मिला है और सेवा सर जो आज तक नहीं बना है शिक्षकों का, सेवा सर उसको लागू किया जाए, हम किस कैडर के शिक्षक हैं आज तक ये पता ही नहीं है। इसलिए संघ ने निर्णय लिया कि इस बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन 4 लाख हम लोग शिक्षक है जिसको अपमानित करने का काम सरकार कर रही है, इसीलिए हम लोग अपमान दिवस के रूप में भूख हड़ताल पर पूरे 4 लाख शिक्षक जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष बैठ रहे हैं।
पूरन के मुताबिक अभी शिक्षकों को इस साल अप्रैल के बाद से वेतन बकाया है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में सरकार ने वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पहल की थी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडू का कहना है कि सभी जिलों को इस मद में राशि भेजी जा चुकी है, लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि 17 जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और वक्त है साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी का। चलिए सुनते हैं अमेरिकन ओपन टेनिस में कहां पहुंचे हैं सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, फुटबॉल में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय टीम को हराया और क्रिकेट के मैदान पर पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में महिला और पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। पुरुष एकल वर्ग में चौथे दौर में 9वीं वरीयता हासिल फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा 26वीं वरीयता हासिल अमेरिका के जैक सोक का सामना करेंगे। इनके अलावा तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका यूक्रेन के इलिया मर्चिनको और छठी वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी क्रोएशिया के इवो कार्लोविच से टकराए। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स, कजाकिस्तान की यारोशलावा शेवेदोवा से 5वीं वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, 11वीं वरीयता हासिल स्पेन की कार्ला सुआरेज नवारो से और छठी वरीयता हासिल अमेरिका की वीनस विलियम्स, 10वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की कैरोलिन प्लिस्कोवा से भिड़ेंगी। अमरीकी ओपन में अब अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने दूसरे दौर में स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गुलबिस और अमेरिका की निकोल मेलिशियर की जोड़ी को 6-2, 7-6 से मात दी। अब तीसरे दौर में सानिया मिर्जा और बारबोरा अमेरिका की निकोले गिब्स और जापान की नाओ हिबोनो से भिड़ेंगी। लेकिन मिश्रित युगल में भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस दूसरे दौर में अमेरिका की कोको वांडेवेगे और राजीव राम की जोड़ी से कड़े संघर्ष के बाद 7-6, 3-6, 13-11 से हार गई और इसके साथ ही पिछले साल की इस चैंपियन जोड़ी का अभियान समाप्त हो गया। दूसरी तरफ मिश्रित युगल वर्ग में ही भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार कनाडा की गैब्रिला दारोवस्की ने उलटफेर किया। इस जोड़ी ने छठी वरीयता हासिल चेक गणराज्य की आंद्रिया हलवाचकुआ और पोलैंड के लुकास कुबोट को 5-6, 6-3, 10-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां इनका सामना जर्मनी की एनालेना ग्रेनेफील्ड और कोलंबिया के रॉबर्ट फारा से होगा। और अब बात फुटबॉल की। बीते शनिवार को भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने से 38 पायदान ऊंची प्यूर्टो रिको को मुंबई में खेले गए मैच में 4-1 से मात दी। इस जीत को कई मायनों में महत्वपूर्ण मानते हैं फुटबॉल समीक्षक नोवी कपाड़िया।
सबसे पहले भारत को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नया बना है, फुटबॉल ग्राउंड शानदार स्टेडियम है, 20,000 की कैपेसिटी। पुर्तो रिको के साथ मैच में भी 6,000-7,000 लोगों ने देखा है और प्लेइंग सरफेस बहुत अच्छा था। दूसरी खास बात है कि स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन को 1.5 साल से भारत के कोच रह चुके हैं और अब लग रहा है उनको अपनी प्लेइंग 11 पता लग गई है। रैंकिंग में सुधार होगा क्योंकि हम 152 पे है, वो 114 पे है।
उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में विश्व कप क्वालिफायर्स में तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ 2-1 से हारने के बाद भारत की ये लगातार चौथी जीत है। और अब बात क्रिकेट की। मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने पल्लेकल में खेले गए 5वें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका को कल 5 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 43 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में उसके सलामी बल्लेबाज और कप्तान डेविड वार्नर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 106 रनों की शतकीय पारी खेली। इस दौरान वार्नर ने 126 गेंदों पर 9 चौके जमाए। उनके अलावा जॉर्ज बेली ने 44 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 40.2 ओवर में केवल 195 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा ने 34, धनुष्का गुनाथिल्का ने 39, कुशल मेंडिस ने 33 और सचित पथिराना ने 32 रन बनाए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की ये एक दिवसीय सीरीज 4-1 से अपने नाम की। वहीं कल पाकिस्तान ने सरफराज अहमद के 90 और शोएब मलिक के 77 रनों की मदद से कार्डिफ में खेले गए 5वें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 303 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 48.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 302 रन बनाए थे। इस हार के बावजूद इंग्लैंड ने 5 मैचों की ये एक दिवसीय सीरीज 4-1 से अपने नाम की। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब सुनिए वसतुल्ला खान की डायरी, जिसमें वो परिवार और बच्चों के हक के मेटाफर से बता रहे हैं कि कई देशों के लोग मिलकर क्यों नहीं रह पाते।
जब पति और पत्नी साथ नहीं रह सकते तो फिर वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं या तलाक ले लेते हैं। सुलझे हुए परिवारों में ये काम अच्छे अंदाज में हो जाता है और उलझे हुए परिवारों में मारपीट के बाद हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि पति या पत्नी में से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से एक दूसरे को बांध के साथ रख सके। समाज भी इस बात को कबूल कर लेता है कि अगर आप साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाएं। दुनिया का हर बाप और माँ जब साथ नहीं रह पाते तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चे भी एक दूसरे से छीन लें। अगर झगड़ा बढ़ जाए तो फिर अदालत या पंचायत बीच में पड़ती है। बच्चा सयाना हो तो उसकी मर्ज़ी मालूम की जाती है, सयाना ना हो तो अदालत देखती है कि माँ या बाप में से कौन इस उम्र में उसकी अच्छी देखरेख कर सकता है। मगर बच्चे का ये हक़ मानने के बाद कि वो जब चाहेगा अपने माँ या बाप से मिल सकेगा और उनके साथ वक्त बिता सकेगा। यूँ बच्चे के साथ होने वाली ज़्यादती की किसी हद तक भरपाई की कोशिश की जाती है। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे एक छत तले रहें, हंसी खुशी रहें और हर दुख सुख मिल बांट के झेलें। पर ऐसा भी हो जाता है कि माँ बाप के होते या उनके मरने के बाद बहन भाइयों में नहीं बनती, वो जायदाद का बंटवारा चाहते हैं। ये काम हंसी खुशी भी हो जाता है और कभी सर फुटवल भी हो जाती है और बात यहाँ तक भी बिगड़ जाती है कि खून के रिश्ते खून के प्यासे हो जाते हैं। मगर समाज और कानून इंसान का ये हक तस्लीम करता है कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ जहाँ चाहे रहे या ना रहे। हम जो पति और पत्नी को शादी और तलाक का हक देने में कोई आपत्ति महसूस नहीं करते, हम जो बच्चे को हक देते हैं कि वो माँ या बाप में से जिसके साथ भी रहना चाहे, हम जो अपने भाइयों और बहनों को ये हक देते हैं कि चाहें तो एक छत तले हंसी खुशी रहें, ना चाहें तो अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएं। मगर जो हक हम एक इंडिविजुअल के लिए तस्लीम करते हैं, इनमें से कोई हक एक देश की छत तले रहने वाली किसी कौम या इलाके को देने के लिए तैयार नहीं होते। भले इसके लिए हमें खून की नदियों से गुजरना पड़े, भले कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी चार दीवारी में रहने वाली कौमों को हंसी खुशी हक देते हैं कि जब चाहो चले जाना, जब चाहो लौट आना। क्या अजब दुनिया है। ईस्ट तिमोर, साउथ सूडान, इरिटेरिया, बांग्लादेश भी इसी दुनिया में है। जैफना के तामिल, कश्मीरी, बलोच और कुर्द भी इसी दुनिया में हैं। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड, कोबेक, चेक और स्लोवाकिया, भूतपूर्व सोवियत यूनियन भी इसी दुनिया में है। है ना अजीब दुनिया।
ये थे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्लाह खान। और अखबारों में आज क्या कुछ छपा है बता रहे हैं दिलनवाज पाशा।
जी अमरेश, आज शिक्षक दिवस है और दैनिक भास्कर ने इस पर विशेष कवरेज प्रकाशित करते हुए ऐसे 32 शिक्षकों के नाम दिए हैं जिनसे भारत बनता है, ये अखबार ने बताया है। और इनमें सर सैयद अहमद खान, महात्मा ज्योतिबा फुले, श्रीनिवासन रामानुजम, सत्येंद्रनाथ बोस जैसे शिक्षकों के नाम हैं। एक खबर जनसत्ता से जिसके मुताबिक एम्बुलेंस के इंतजार में रात भर शव लेकर बैठी रही महिला, मेरठ का मामला है। आपको दाना मांझी की तस्वीर याद होगी जिसमें एम्बुलेंस न मिलने पर उनको शव कंधे पर लेकर जाना पड़ा था। स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीर घटना बताया है और आम आदमी पार्टी में जो एक आपत्तिजनक सीढ़ी आने के बाद सियासी तूफान उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक विधायक ने आरोप लगाया है कि पंजाब में जो जिम्मेदार नेता हैं वो टिकट देने के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। और एक खबर अमर उजाला में है, इसका जिक्र करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जवीद अहमद ने टेजर गन का परीक्षण अपने ऊपर ही करा लिया। और टेजर गन एक ऐसा हथियार होता है जो संदिग्धों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जी समय कम है, बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं।
भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया के अलेपो शहर में सरकारी सैन्य बलों को बड़ी कामयाबियां मिली हैं और वो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके की पूर्ण घेराबंदी करने में कामयाब हो गए हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली येल्द्रिम ने कहा है कि तुर्क सेना के समर्थन से सीरियाई विद्रोही गुटों ने तुर्की की दक्षिणी सीमा से सटे सीरिया के इलाकों से इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह खदेड़ दिया है। और जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्कल को मैक्लेनबर्ग पश्चिमी पोमरानिया प्रांत में हुए चुनावों में तगड़ा सियासी झटका लगा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत का यह अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
हैं।